नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली में 16 किलोमीटर के 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों के इलाज में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ाई और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी की 23वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राजधानी में 16 किलोमीटर के 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक द्वारा आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक बनाने की घोषणा की गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 12,015 करोड़ रुपए की दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 13 स्टेशन होंगे, जिनमें 10 स्टेशन भूतल पर और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इन स्टेशनों में आरके आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, समर स्मारक उच्च न्यायालय, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ, कालिंदी कुंज सेक्शन में सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज होंगे, जबकि एरो सिटी स्टेशन आगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 1 स्टेशन से जुड़ेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है।
ये जो 3 आज कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़, एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर 1,419 करोड़, तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर 1,024 करोड़। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन CO2 एमिशन एवरी ईयर विल बी सेव।
आज केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया नया मेट्रो कॉरिडोर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिव्यांग जनों के दिव्य अटल कार्यक्रम में शामिल हुई और दिव्यांग जनों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सुलभ सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की देरी न हो और अस्पताल में आने वाले हर मरीज का सम्मान हो तथा संवेदनशील तरीके से उनकी देखभाल की जाए। मुख्यमंत्री ने आज दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा में आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में और माई भारत द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान से आए युवाओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि युवाओं के विचार, उनकी ऊर्जा और लोकतंत्र के प्रति जिज्ञासा सशक्त भारत की आधारशिला है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए कार्यक्रम में शामिल युवराज प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकारी मिली।
तो जब हमारा माय भारत में सिलेक्शन हुआ और हमारा यहाँ आना हुआ तो फर्स्टली हमें डेमोग्राफिकली दिल्ली कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में जानने का मौका मिला और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पर कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीजें जानने का मौका मिला। हमने पॉलिसी मेकिंग के बारे में जाना कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है।
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। 4 दिन का यह सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। कल दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बदलते भू राजनीतिक परिवेश और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के लिए त्वरित, अधिक कुशल और सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2024 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग को निरंतर अनुकूलन, नवाचार और आधुनिकीकरण करना चाहिए।
There is also an urgent need to actively support the government of India's ambitious Atmanirbhar Bharat Abhiyan, encouraging indigenous production, strengthening local supply chains and promoting domestic industry. You can also contribute to building a self-reliant and resilient defense ecosystem.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, अरावली पहाड़ियों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं और अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री यादव ने लोगों से विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार के झांसे में न आने का आग्रह किया।
कांग्रेस तो झूठ और भ्रम इसमें फैलाने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि अरावली में जो लगभग मुझे जानकारी जो दी है कि 1100-1200 माइंस में राजस्थान में 700 तो अशोक गहलोत के ही समय में दी गई हैं। ऐसे भ्रामक आंकड़ों में जनता नहीं आ रही है, उनका झूठ लगातार फेल हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ओपन है। तो अनावश्यक एक न्यायालय के निर्णय को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, जो उचित नहीं है।
श्री यादव ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने का है।
कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो, अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर राजधानी में प्रदूषण के लिए उनकी आलोचना की है। पत्र में श्री सक्सेना ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर 11 वर्ष तक लापरवाही बरतने और वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने धूल को रोकने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। उधर आम आदमी पार्टी के मीडिया सलाहकार अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रदेश सरकार प्रदूषण नियंत्रण में विफल रही है और लोगों का ध्यान इस मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस दौरान निगम ने मंगोलपुरी वार्ड में 2 प्रदूषणकारी, कीर्ति नगर में 7 संगमरमर काटने वाली और केशवपुरम जोन में 16 प्रदूषणकारी इकाइयों को सील कर दिया है। निगम का कहना है कि ये समन्वित कार्रवाइयां सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा, बेहतर अनुपालन और स्वस्थ वातावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश वर्मा ने आज राजेंद्र नगर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वर्मा ने स्थानीय समस्याओं को चिन्हित कर उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और जनता को जल्द राहत मिल सके। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देश के प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आवाज उठाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता आयोगों को कागजी कार्रवाई रहित प्रणाली में एकीकृत कर मामलों को दर्ज करने और निपटाने में सुधार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश सिंह साहब ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की नींव एक जागरूक, सजग और सशक्त उपभोक्ता पर टिकी होती है। उन्होंने इस अवसर पर नागरिकों से अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हुए कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा से निर्वहन करने की सलाह दी है। दिल्ली की एक अदालत ने लालकिला विस्फोट मामले में 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ाकर 8 जनवरी तक कर दी है। आरोपियों की पटियाला हाउस अदालत में पेशी के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने डॉक्टर अदील राठर, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद वागे, जसीर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और सोएब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 304 ग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से एक दोपहिया वाहन को भी जब्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3M6 के जरिए अगली पीढ़ी के अमरीकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नवाचार से लेकर भरोसे तक आज भारत वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक भरोसेमंद और सम्मानित साथी के तौर पर खड़ा है। उन्होंने इस मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी बधाई दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये मिशन भारत की तकनीकी क्षमता और इसरो की सफलता के पीछे के अनुशासन को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अब एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण नियंत्रण को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी में जरूरतमंदों को 100 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए। ये वितरण अभियान बढ़ती ठंड और प्रदूषण जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य खुले में कोयला और लकड़ी जलाने जैसी प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकना है। घने कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज कई उड़ानें और रेल सेवाएं बाधित रहीं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 16 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं भारतीय रेलवे के दिल्ली डिवीजन ने बताया कि दिल्ली जाने वाली 50 से अधिक रेलगाड़ियां 6 घंटे की देरी से चली। राजधानी में आज सुबह के समय सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई, वहीं दिन में धूप खिली थी। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 239 दर्ज किया गया, जो वायु की खराब स्थिति को दर्शाता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने और देश के खेल ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। इसके अंतर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों में इंटर्नशिप दी जाएगी, ताकि उन्हें खेल प्रशासन, संचालन और इससे जुड़े क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त हो सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली में 16 किलोमीटर के 3 नए मेट्रो कॉरिडोर को मजबूती दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों के इलाज में संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन तक बढ़ाई और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।